पाठक्ति सिद्धांत पद्धति की कहा गई, हम लोगों के मन की उपज नहीं। महाप्रभु जी, महाप्रभु जी के ये परिकर हैं, नित्य परिकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने अमृत प्रवाह भाग से इसमें लिखा है और प्रभुपाद जी ने अनुभाग से लिखा। तो कह रहे हैं जगत गुरु महाप्रभु इस लीला के द्वारा ये शिक्षा देते हैं, यदि कोई सौभाग्यवान जी कृष्ण को हृदय के सिंहासन पर बैठाना चाहता है तो सबसे पहले हृदय का मल, जहां कहीं कृष्ण नहीं बैठेंगे, यहाँ पवित्र आसन होगा वहां पर बैठेंगे, इसलिए हृदय में जो बैठेंगे हृदय को एकदम सब प्रकार के मलों को दूर कर देना पड़ेगा। ये मल क्या है? अन्याभिलाष, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त दूसरी कोई भी कामना हो तो ये कामना अन्याभिलाष, कोई भी कामना। यद्यपि यह कामना भावावस्थ तक कुछ कुछ रहेगी, किंतु फूल कामना है उनको तो हम दूर कर सकते हैं, इसलिए इनको दूर किया जाए। कर्म, ज्ञान, योग, चेष्टा और आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज और कुटी नाकी माने जितने प्रकार के कू हैं, कू संग, कू भोजन, दर्शन, कू संग, जितना कू है और नाकी माने नहीं, जिसके लिए निषेध किया गया है शास्त्र में, दूसरों का संग मत करो, अभक्ष मत खाओ, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, अन्नाभिलाष, ज्ञान इत्यादि को दूर रखो, ये सब निषेध है, इनको भी दूर करो। ये कू और ना टी टी माने ये बंगला में कुटी नाटी होता है। जहां पर भक्ति तत्व के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा हो उनको निकाल दिया। कैसे निकलेगा? हम गृहस्थ आदमी है, कैसे निकलेगा? हम बड़ी व्यवसाय करें नौकरी कर, अरे भाई इसको इस रूप में ले लो, हमारे परिवार के जितने हैं वो सब कृष्ण के दान दान, मैं इन दासी दासियों को पालन करने के लिए ठाकुर जी के सेवा के लिए अपना जीवन धारण करूंगा, इसलिए जो कुछ कर रहा हूं मैं भगवान को सेंटर करके भगवान के लिए कर और सचमुच में ऐसा ही कर। जीव मात्र को भगवान का समझ करके उनकी सेवा कर सकता है, उनको प्रणाम इत्यादि कर, बस सब कृष्ण का संसार हो जाएगा इसलिए, और सचमुच में भगवान के लिए कर। तो जब तक संसार में ही है तब तक भाई कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, संसार वालों से व्यवहार करना पड़ेगा, किंतु उन सब व्यवहारों को भक्ति के अनुकूल करके सब ले और विमुख होकर के करोगे तो तुम्हारा कृष्ण का सेवा भी भक्ति का भी हो जाएगा। इस तरह से इन सबको बतलाया है, कंकर, स्त्री, ये सब चीजें इन सबको दूर किया है। कोई भी वासना होती है पहले, वासना से कामना, कामना से इसको रूप में उसको भोग की लालसा, इसलिए कामना ही नहीं रहनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है हरि विमुखता, वैष्णव की विरोधिता, गुरु की विरोधिता, भक्ति की वासना की विरोधी बात नहीं, ये सबको दूर करती है। हरि विमुख का लोगों का जो देखना, जब किसी प्रकार से ये वैष्णव का विरोधी थोड़ा सा भी जान पड़े उसके आचरण से वचन उनका संग मत करना, तुम्हारी चित्त वृत्ति को सपट कर। जहां पर सेवा की वृत्ति होती है, भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती है और भावों की उद्दीपना होती है, ऐसे वैष्णवों का संग कर। स्वजाति स्निग्ध आशय, ऐसे वैष्णव अच्छा तो वही लगेगा जो विरोधी वाले हैं, किंतु ऐसे संग से दूर रह करके भगवान का भजन करने वाले का संग। कुछ लोग ऐसे हैं रेखे वाले का संग करेंगे किंतु वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, विषय लोगों का संग करेंगे, बीस हाथ पचाल पाड़ेंगे, पचाल माने क्या, बकवास बेकार का करेंगे, किंतु कृष्ण नाम नहीं करेंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे, इन लोगों का संग सबसे दूर होना चाहिए। जो मायावादी है उनका संग सबसे पहले छोड़ो, ये बड़े बड़े कंटक हैं। मायावादी माने क्या, दुर्गा जी की पूजा भी वही है, शंकर जी की पूजा वही है, कृष्ण की पूजा भी वही है, जिसका जो इष्ट देव है, चाहे भूत भी उसका इष्ट है, कोई बात नहीं, उसमें हम इन भजन कर ऐसे लोगों का संग दूर रखना चाहिए। ये लोग मायावाद अद्वैत मायावाद, मायावादी माने क्या, हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, पेड़ पौधे जितने नदी नाले गैया बछड़ा चोर डकैत सभी ब्रह्म है, और ये संसार झूठा है, सभी ब्रह्म है। इन लोगों का संग यदि भक्ति करना है तो मतलब वैष्णव के बराबर इनको मत समझो, नहीं तो तुम्हारी भक्ति, इनको दूर से प्रणाम करो, असम्मान भी मत करो, किंतु हृदय में स्थान मत करो, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार मत, इन सब चीजों को दूर कर किया जाए तब भगवत भक्ति होगी। इसी प्रकार से और भी जो चीजें हैं कि मैल को दूर करके रखा जाएगा, पवित्र आसन होने से ही भगवान बैठ जाएंगे, साफ कर दिया सिंहासन, किस पर ऊपर बिछाया नहीं, कुछ गलीचा हो नरम रुई का कोई चीज बिछाना पड़ेगा ना, उसमें सेंट इत्यादि दे दो, सुगंधित भी हो और कोमल हो मृदु हो मधुर हो, तब तो वो बैठेंगे। ये चीज है भक्ति, भक्ति के द्वारा पवित्रता हो गई, चित्त में कोई ये चीज नहीं, किंतु पवित्रता होने से ही नहीं होगी, उसमें भक्ति का पूर्व होकर के कोमल मस्ते सुगंधित मधुर वहां पर आसन बिछाओ उसके लिए, और तब फिर उनको सब वो प्रभु आ सकते, ऐसा ही भाव लेकर के चलेंगे तो हम लोगों का गुंडिचा मंदिर भाजन करना सफल हुआ। अन्यथा हजार करो प्रभु को बुलाओगे, भोजन भी दो तो वो न कर लेंगे और न करेंगे। ऐसा साधन हम लोग करने की आज प्रतिज्ञा करेंगे, आज से ही हम कर लेंगे, यदि कोई त्रुटि है उसको निकाल करके फेंक देंगे, काम को लोहमा को, और वैष्णव के अनुगत्य में, महाप्रभु जी के अनुगत्य में, हमारे विश्वनाथन के अनुगत्य में हम लोग इसी करके भजन करते हैं। कल हम लोग 4:30 बजे मैदान में कल ठाकुर जी गंगा रंग से नहीं बैठते हैं, कल महापुर जी और परसों होगी शाम को हम लोग रथ यात्रा यहाँ से पूरी गेट हो सकता है तो भीतर की तरफ में भी समझाएगा तो हम ले जाएंगे, हम बताओ वही गेट तक तो दे दीजिए, और उसके बाद में भीतर में भी कुछ आगे पहले 6 बजे यदि हम लोग आरम्भ कर रहे हैं और तब यदि आरम्भ हो जाए तो हम लोग जरूर पहुँच जाए दिशा में, और फिर उधर घूम जाएंगे घूम करके बंगाली घाट होते हुए आज समाज रूप से आज भक्ति ठाकुर जी का शुरू था और गदाधर पंडित जी का भी शुरू था, अभी तक हम लोग आज 10-15 दिन से गदाधर पंडित के संबंध में ही हम लोग बोल रहे, गदाधर पंडित जी कौन है, उन्हीं के संबंध में उन्हीं के भाव की सत्यता में हम लोग अभी तक अभी संक्षेप में उपदेश की महत्ता ही उनके जीवन की महत्ता, चरित्र की महत्ता। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि बंगाल के रहने वाले थे, कलकत्ते में के पास भी गिलानी उनका जन्म था, ये सब हम ये कोई विशेष बात है, उनके उपदेश क्या था, इनका जीवन का वैशिष्ट्य क्या था, उनके उपदेशों का वैशिष्ट्य क्या था, इसके पर गीति काव्य में
भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति के विषय में उनके विचार इत्यादि को काम लाभ करें। कल हम लोग का समय मिलेगा भक्ति विनोद ठाकुर जी के संबंध में और राघव पंडित के संबंध में हम लोग के बोले। भक्ति विनोद ठाकुर जी राधा कृष्ण के नित्य परिकर और महाप्रभु जी के भी नित्य परिकर, दोनों लीला में इस लीला में भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में और उस लीला में कमल मंदिर के रूप में चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए आए थे ये भी ठीक उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, क्योंकि उनके लिए परिकर उनकी इच्छा को पूर्ण करना है उनका काम। भक्ति चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, जीव मात्र जितने भी जीव हैं पेड़ पौधे इत्यादि से आरंभ करके चौरासी लाख प्रकार के जेवी में भ्रमण करने वाले जितने भी जीव हैं सब भगवान के साथ हैं। भगवान को छोड़ करके इसकी सेवा छोड़ करके हम लोग वर्तमान स्थिति में संसार को ही सत्य समझ रखता है और अपनी बकौती संपत्ति इसको मान करता, शरीर को भी मैं मान करता और इसमें मैं और मेरे कर्तव्य यह बदलता रहता है। प्रति जन्म में जीव कभी भी नहीं सुखी हो सकता, चाहे वो स्वर्ग चला जाए चाहे वैकुंठ मुक्ति भी मिल जाए, वो कभी भी इन दुखों से किसी कारण नहीं पा सकता, बल्कि मुक्ति में और वो इतना दुख उसको होता है जिसमें अभी दुख होकर के वो मुक्ति जैसा होकर के उस दुख की अनुभूति भी नहीं कर सकता है, ऐसा होता है। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको नहीं, भगवान और भगवान के भक्त लोग केवल किसी भी आते हैं किसी प्रकार से चलाकी से चतुराई से बुद्धिमत्ता से किसी प्रकार से भी ये भूले भर के जो जीव हैं इनको अपना भगवान के चरणों की सेवा में लगा, यही उनका मूल जगत में आने का। महाप्रभु जी ने जब अपने जीवन में चरित्र में जो कुछ दिखता है जिनको हम अभी लीला में देख रहे हैं ग्रंथों में देख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का वही उद्देश्य था, किसी प्रकार से जीव को भगवान के तरफ में मोड़ दिया जाए, चाहे वो संसार में रहे चाहे त्यागी रहे जैसे भी हो। कृष्ण संसार पर जीवे दया नामे रुचि भगवान का जीव भगवान का नित्य था और जीवे दया जीव जो भगवान को छोड़ करके ये दुख में ही सुखी जो अनुभूति करके पागल हो रहा है इसके इस महारोग को कैसे छुड़ाकर भगवान के तरफ से जाए, इसका नाम है दया। दया माने ये नहीं कि किसी को रोटी का टुकड़ा कपड़ा लगा और संसार में जो अभी जिसमें भगवान को भुला हुआ है उन्हीं और चीजों को देकर के जिनको भगवान से और भुला दे, ये दया नहीं है। ये क्या हुई, एक आदमी को पीलिया रोग हो गया और वो घी की तली हुई चीजों को मांग रहा है, अच्छा घी की तली चीज उसको दे दिया जाए तो क्या होगा, वो मरेगा। अब कोई व्यक्ति भाई थोड़ा सा दे दो ना क्या हर है? तो क्या है उसका शत्रु हुआ। इस तरह से जो विषय में हम फंसे हुए हैं और भगवान को भूल रहे हैं उन्हीं विषयों को रूप रस गंध शब्द पर प्रतिष्ठित करें, वही चीजें यदि उस जीव को दे दिया जाए तो उसमें तो और दुख करके भगवान से और भी दूर हो जाएगा, ये उसका अभाव। और जो लोग उनकी इस वृत्ति को कम करके भगवान में उसकी चित्त वृत्ति लगे और क्रमशः भगवान के तरफ में बढ़ता चला ये भक्ति का फल गया। एक जीव को भी संसार की तरह जाते उसके चित्त वृत्ति को भगवान के तरफ नहीं दिया जाए, इससे बढ़ करके और कोई जाए जगत में जाए। भले ही अभी हम लोगों को इसमें दो प्रतीत होता है, जैसे वो एक तली हुई चीज मांगता है और कोई उसको नहीं देता है और कहता है इसको मत देना तली हुई चीज, तो वो बिगड़ जाता है और जो मूर्ख है वो भी बिगड़ जाए। अरे देने में क्या दे, देना तो किंतु मर जाएगा उसको पता नहीं। ठीक ऐसे ही क्यों वो जो संग्रह करके मर रहा है उसी को जब दिया जाए तो ये तो दया का विपरीत हो गया। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास में ले जाकर तो उसकी चिकित्सा करानी, ये दया है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का यही जीवन के प्रति दया, खूब दया नहीं इसको समझना बड़ा भारी सकती है। इस गुरु नानी और ये वो कैसे दूर होगा नाम के द्वारा, नाम के प्रति यदि रुचि हो तो कैसे नाम के प्रति रुचि हो, यही कारण नहीं है। जी तो उसे गाली देगा उसके ऊपर में बिगड़ेगा, यदि हम उसके इस विषय में बाधा दें तो रूप राष्ट्र बंध शब्द उसे भोग तो वो जीव और उनकी जो पिए हैं उन सब बिगड़ेंगे, तो भी उनकी परवाह नहीं करते। उसकी चिकित्सा करना ही अतः ये हरि नाम जो है सबसे बढ़कर भी उसकी चिकित्सा, सबसे बढ़कर क्या उसकी चिकित्सा, किंतु नाम के प्रति रुचि हो। नाम तो सभी लेते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो नाम नहीं लेता, अल्लाह खुदा गौर आत्मा परमात्मा क्या क्या ये सब लोग सभी नाम लेते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, किंतु नाम के प्रति किसी की रुचि लगा देना ये बड़ी भारी बात है। भक्ति विनोद ठाकुर ने सारा जीवन इस जगत में यही था, जैसे एक जीव की रूप भगवान के साथ ये इसी दया, इसी के लिए उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे और हमारे ब्रह्मचारियों ने उनके संबंध में बताया। गदाधर पंडित जी राधिका जी अभी तक चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण मिली रूप में आए, ने देखा भीतर में कृष्ण है और ऊपर में क्या है उनका अत्यंग कितना है प्रति अंग राधा जी के प्रति अंग से, और राधा जी का बाहर में प्रकाश और भीतर में क्या है भीतर में कृष्ण है और बाहर अंत कृष्ण बहिर बाहर में वो गौर राधा जी की अंग दो मंत्र। फिर राधा जी क्या है गदाधर पंडित जी राधा जी कहते हैं उनके साथ में आए नहीं, राधा जी की अंग और शांति को कृष्ण चोरी करके लाए। भीतर में कृष्ण है और उनके भावों को लेकर के और उनकी अंग शांति को लेकर के वही राधा जी भाव से और तो अलग नहीं है वो ऊपर से गौर से और अभिनय कर रहे हैं राधा जी का, जैसे राधा जी कृष्ण के विरह में ब्रज में रह करके तड़प रही थी और वो मथुरा और द्वारका में है, इसी चीज का अभिनय उनको करना है और तब इसी अभिनय को जगत में शिक्षा दे करके इसका कुछ अंश जीव को दे और कुछ अंश अनुवाद। तो उन्होंने कुछ अंश जीवों को सेवा की भावना, कैसे गोपियां कृष्ण की सेवा करती हैं उनके अनुगत में कैसी सेवा की जाएगी ये समस्त भक्ति का समस्त होगा अंतिम है श्रृंग है, इसलिए इसको कहते हैं श्रृंगार। लोग इसको बुरा समझते हैं किंतु कृष्ण की यह सेवा श्रृंगार रूप में सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप में होती है। उसका एक भाव जिसको तत्त्व भाव इच्छा मई कर रहे हैं ये जीवों को प्रदान किया किसी को मंजरी भाव और जो कि शांत बात सप्त बात और मधुर देवी रामचंद्र जी आए, कृष्ण आए, उन लोगों ने और सब रसों को जगत में प्रदान किया, किंतु यह भाव नहीं दिया और न तो कृष्ण आकार दिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव शांति लेकर के विशाखा जी और आया मान दिए, ललिता जी और सब शक्तियों के सामने रह करके उस चीज का स्वयं आस्पादन किया और नाम के माध्यम से वो तमाम विशुद्ध जो प्रेम था वो जगत को दिया। तो गदाधर जी क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं जो हमारा अभिनय जो कर रहा है, ये कैसा हमारा अभिनय ये कर रहा है, कहाँ पर स्थिति होती है, कहाँ पर विकृति होती है, कहाँ पर ठीक रूप में देख, वो सब समय बचपन से लेकर के और अंत तक लीला अंत तक, जबकि वो गोपीनाथ ने प्रवेश करे सब तक लीला का वास किया, ये कैसे ये कर रहे हैं हमारा वो बच्चे। और जहाँ जहाँ कमी होती है ना वो क्या करते हैं, इंग्लिश रूप में उनको शिक्षा देकर यहाँ आपका ठीक नहीं,
स्वयं भागवत पाठ करके सुनाते थे
जैसे कहाँ पर ऐसा हुआ, जबकि गया से लौट करके आए ना, तो वहां पर बाहर में जा रहे हैं और जहाँ पर सुना रहे हैं वहाँ पर बरहा ये भीतर से उनके उस समय अभिनय में कुछ गड़बड़ी हो गए, क्यों अभी विशाखा जी ने भी सीख रहा है उनका पूरा, इसलिए अभिनय में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो भीतर से उनको भाव पूरा करने के लिए भीतर में पर्दे की आग से उन्होंने सीखा है
ना,
यही श्लोक कहा। और तब वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हा कृष्ण और भीतर से वो कह रहे हैं, अरे ऐसे नहीं हृदय से तो बोलो हा कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण, जब वो देखा तुम के अंदर में ये भी भाव, अरे ये हमारे कहने में कुछ त्रुटि हो रही है, तब गदाधर जी का जो स्वर निकलता था कृष्ण से अभी रसमय और विप्रलम्भ भाव में सुनता इस तरह से गदाधर पंडित जी ये राजकारी में कोई उनको कुछ अंश के रूप में मानते हैं, किंतु अंश नहीं पूरी राजकारी भी गदाधर के रूप में इस प्रकार से महाप्रभु जी को सब सहयोग दिया, किंतु सिर्फ करके उनको सब सहयोग दिया, ऐसे गदाधर पंडित जी का और भक्ति विनोद ठाकुर जी का आदुर्भाव है, शिरोभाव दिवस है, उनके चरणों में हम लोग कोटि कोटि बार हम लोग प्रणाम करते हैं, उनके भावों को हम लोग थोड़ा सा भी स्पर्श करने हम लोग का कल हम लोग 9 बजे ये गुंडीचा मंदिर
ृष्णाय राधिकाय सदाये कृष्णाय सत्ताय पदभक्तायं प्रतिगन्तमो वीरपकाशनो सूत्रे सन्वयत्रे
मंदिर मार्गल महोत्सव किए जैसे पूरी में होता है, हजारों हजारों भक्त लोग बल बल के साथ में कीर्तन करते हुए वहां जाते हैं और मंदिर होते हैं, उसी के भाव की दीपना के लिए हम लोगों ने भी यहाँ पर गुंडीचा मंदिर मार्ग में कहा जाता है, भाव सीखना के लिए जरूरत है, यहाँ और समुद्र में ये सब चीजें नहीं हो या किसी अर्थ में भी ये सब चीजें नहीं हो, समझ में नित्यानंद माधव के संबंध में उसको बताया था थोड़ा बहुत पत्र है नए आदमी ने लिए थोड़ा सख्ती से बतला करके पत्ते भूमिका मंदिर बतलाएंगे प्राचीन काल में सतयुग में सतयुग ब्रह्मा के प्रथम पराग थे राजा थे इंद्रदेव राजा उज्जैनी अथवा मालव देश में उज्जैनी और मालव देश में अवंती नाम की राजधानी थी उसी को आज तक उज्जैन था अभी वही का लगा था सबसे बड़े धार्मिक वो परम भगवत किसी समय में तो ये ब्राह्मण प्रत्येक ब्राह्मण उनके यहाँ आया और उनकी महिमा बतलाने लगा जिन्हें आ रहा
हूँ
माधव जी को दर्शन करके मैं आ रहा हूँ और उनकी बड़ी महिमा जा इनकी देखने की बड़ी संख्या हुई अब वो ठाकुर कहाँ है वो तो चले गए और उनको दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हुई और उस उत्कंठा के लिए उन्होंने चारों तरफ में अपने लोगों को भेजा दक्षिण की तरफ में और पूर्व की तरफ में उन्होंने अपने पुरोहित को भेजा या पुरोहित के लड़के को भेजा जिसका नाम विद्या सब जगह से लोग बहुत चेष्टा करते भी एक माधव का पता नहीं लगा पाए ये समुद्र के किनारे एक कंपनी पर पहुंचे कुछ लोगों की राय है जहाँ वर्तमान मंदिर है वहीं पर नील माधव है और कुछ लोगों की राय है अभी नील माधव नाम का एक पर्वत है वहाँ पर भी लोग जाते हैं तो वहाँ पर उनका नील माधव जी का मंदिर है जैसे कि वृंदावन में भी तीर्थ है और वहाँ पर भी तीर्थ है तो कल मुझे लहरी कथा हो सकता है अधिकांश लोगों का किंतु यह विचार कि जहाँ पर के लिए मंदिर है वहीं पर नील माधव जी थे और उनकी नील माधव की एक मूर्ति अभी भी वहाँ पर विराजमान है पश्चिम या समुदाय वाले पर तो वो वहाँ पर समुद्र के किनारे पर पहुंचे और पहुंच करके सोचने लगे उनको कुछ ऐसे आभास हुआ हो न हो यही कहीं पर वो ठाकुर जी क्योंकि सुंदर प्राकृतिक दृश्य जगह है समुद्र पास में है
छात्रों का जैसा वर्णन है अभी भी वैसे हो
वहीं पर समुद्र के किनारे पास ही में कबरकंदी में पहुंचे शाम हो गई शाम को बृहस्पति में सबक मंदिर सबक मंदिर होता है गणाश्रम बंद से बाहर वहां पर पहुंचे उनका नाम था विश्वास सदर का उनके यहाँ पर पहुंचे वो कहीं बाद में गए हैं लड़की ने कहा जैसे वो पूजा करने के लिए पिताजी गए हैं आप यहाँ पर ठहरिए शाम को रात के समय में वो लौट करके आए शाम को उन्होंने लड़की के ऊपर नहीं हाथ दे दिया जैसे उनकी सेवा कर वहीं पर सेवा करने लगी कुछ दिनों के बाद में उन्होंने उस लड़की को उसी को ही विवाह दिया और घर में नहीं रख लिया लड़के ने कहा उसी से पता लगा लड़की ने बतलाया हमारे पिताजी नील माधव की पूजा के लिए ये बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न लड़की से कहा तुम कोई उपाय करो जिससे कि तुम्हारे पिताजी हमसे दिखला तो उसने कहा जैसे पिताजी हमारे पति को आप उनका दर्शन करा मैं तो प्रतिज्ञा के लिए किसी को नहीं दिखला तो लड़की को बहुत स्नेह करते थे इसलिए दिखलाएंगे पट्टी बांध करके आंखों में पट्टी बांध करके और उसको ले गए बैलगाड़ी को चढ़ा करके और लड़की ने सबको दे दिए थे उसको फेंकता चला गया ऊपर जाकर के ठाकुर मंदिर में जाकर के उनकी पट्टी खोल और छोड़ करके बोलेगा बेटा तुम यही तो प्रतीक्षा करो, मैं अभी फल फूल ले आकर के ठाकुर जी की पूजा करूँ। वो पुष्प चरण करने के लिए और कुछ फल इत्यादि के लिए वो चला गया। इतने उन्होंने देखा एक पुष्करणी में पाठणी में एक कौआ डाल पर बैठा था और उंग रहा था, वो गिर गया और गिर करके पुष्करणी में और वो मरा और साथ ही साथ में चतुर्भुज धारण करके बैठ देख करके उन्होंने कहा जो तो मैं भी ऐसा करूँ पेड़ की डाल पर चढ़ करके और उसमें गिरने की तैयारी में थे, इतने में आकाश नहीं ऐसा मत करना, और जिस काम के लिए आए वो पहले जा सके इंद्र सिंह महाराज को इसकी ये सूचना दो, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अब तक तो इनकी पूजा ग्रहण कर रहा था और मैं महाराज की भक्ति अत्यंत अधिक है, इनके हाथों से सेवा ग्रहण कर वहाँ से कराए। करने के बाद में अब उसको भी पता लग गया, उन्होंने उसको भी कहा विश्वापति को अब तक आपकी पूजा में ले रहा था और महाराज इंद्र की पूजा लेने की मेरी पूजा, जैसे वृंदावन में ठाकुर जी थे उनकी से हमें लोग गढ़ में गए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी का, तो जयपुर के महाराजा बड़े भक्त थे उनकी पूजा कर लेने के लिए वहां पर चले गए, वो उनकी मर्जी है तो इसलिए उनकी इच्छा हुई उसने इनको कैद कर दिया और बांध दिया जैसे इनको जाने नहीं दे, इसने राजी नहीं इनको छोड़ दो बहुत कुछ काम होगा तुम्हारा भी कल्याण होगा जगत का भी कल्याण होगा, तब उसने ये छोड़ दिया इनको पट्टी बांध करके कर दिया ले आ जा करके फिर उनको छोड़ दिया। छोड़ने पर अपनी पत्नी से परामर्श करके वो चला गया जी मैं खुद शीघ्र ही आऊंगा, अब चला गया महाराज इंद्र जी को खबर दिया कि अपनी सारी सेना धन खजाना रुपया पैसा स्त्री को परिवार से लेकर के वहां से चले और फिर भूमिंदर आए आकर के उस गाँव के किनारे आकर के जब चलने लगे तो सबों को देखा किंतु आगे जाने को देखा कि सब बालू थे, यहाँ तक कि पहाड़ भी पर्वत भी जो था वो भी ढक गया है, मंदिर अंतर का कोई पता ही नहीं, अब तो बड़े दुखी थे। लौट करके आए समुद्र के किनारे और कुछ बिछा करके प्रात वेतन के लिए बैठ गए और प्राण दूंगा इतने हुआ आकाश वाणी हुई कि आप मेरे परम प्रिय भक्त हैं आप प्राण मत करिए, अमृत मारो तो उसमें मैं दर्शन नहीं दूंगा किंतु मैं अब उनके रूप में चार रूपों में आपको दर्शन दूंगा, समुद्र में बहता हुआ आप एक बात कीजिए पहले यहीं पर एक विशाल मंदिर बनाइए समुद्र के किनारे कुछ भूमि पर जिसको संख क्षेत्र भी कहते हैं, संख के समान ही उसकी एरिया ये भुवनेश्वर से ही आरम्भ हो जाती है, भुवनेश्वर से आरंभ करके अवारनाथ इत्यादि और सब उसी के अंतर्गत साक्षी गोपाल और सब उसी के अंतर्गत चलते हैं, तो आप मंदिर बनाइए मंदिर समुद्र के पास ही उसी भूमि पर बनाए, वहीं पर एक बस वृक्ष है वहीं पर काश गुरु कुंडी जी तपस्या करते हैं, सैनिक कब से वो है उसी के आस पास उन्होंने बहुत दूर दूर से पत्थर मंगाए जमीन के अंदर 60 हाँ और ऊपर में 131 हाँ कितना इस तरह से ऊंचाई में बहुत पत्थरों से मजबूत बनाया, बनाने के बाद में अब इसमें मूर्ति स्थापित की जाए, उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी को आह्वान किया या ब्रह्मा लोग गए ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा जी को निवेदन किया कि आप मंदिर की प्रतिष्ठा कर दें, तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो स्वयं वो प्रतिष्ठित है आप उसको मैं उसको या कोई भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, जैसे ठाकुर जी स्वयं होते हैं ऐसे वो भी मंदिर की है, आप एक बात कीजिए मैं चल करके उसमें ध्वजा एक बांध दूंगा और ध्वजा से जो देखेगा वही बैठने के लिए बस आए ध्वजा बांध करके वो चलेगा। उनके आने में और जाने में इतना समय लगा, काफी समय लग गया, और इतने में इतने राजा भी बदल गए। किंतु उनकी पत्नी और उनका जो पुरोहित का लड़का जो आया था, वो सब अभी इसके लिए प्रतीक्षा करके लंबी आई। कुछ दिन बता के वो लौटे, तब तक वो मंदिर भी बालू से ढक गया था और कोई एक राजा थे उन्होंने मंदिर का फिर से बाली को हटा करके और मंदिर का संस्कार किया और कहा कि मैंने इस मंदिर को बनाया। इतने में महाराजा महाराज ने कहा कि मैंने मंदिर बनाई, वो कहते जी मैंने मंदिर बनाया। दोनों में विवाद लगा, दोनों मिश्र के साथ भूषण जी के पास में गए। आप तो बहुत दिन होते हैं, आप बतलाइए ये मंदिर किसने बनाया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाया है इंद्रजिंद महाराज, किंतु बाली से फट गया था, इसको साफ करके बालियों को हटा करके उसको रिपेयर किया है ये गालक। बालक जी बड़े ये हुए लज्जित थे और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा इंद्रजिंद सरोवर के पास में सुन रहो यही बाहर, तो लज्जा के वहीं पर आ गए और मंदिर को अधिपत्य इनकार गए। अब विग्रह उसमें है नहीं, तब वो समुद्र के किनारे कुछ लेकर जो बैठ गए बिना खाए पिए मरे। अब वहां से ये हुई, देखो एक पेड़ का लाल पेड़ का झड़ाएगा तो उसका विष्णु चक्र का उसमें स्थान रहेगा, आप उसकी पूजा करके निकल जाए। कुछ दिनों के बाद प्रतीक्षा करते रहे, लाल पेड़ का सब मजबूत और मोटा वो चिल्ली वहां से आए हर, उसको उन्होंने निकलवाने की चेष्टा की, हाथियों को लगवाया, बड़े बड़े लोगों को लगाया, हजारों आदमी मिल करके उसको निकालने की चेष्टा की, सख्त मत मांगा। फिर कुछ आकाशवाणी हुई या किसी ने कहा कि वो जो विश्वावसु और जो पुरोहित पता लगाने ये दोनों आ करके यदि इसको उठाए तो उठ सकता है। फिर दोनों को बुलवाया गया, सुने का रथ बनवाया और ये दोनों वहां पर गए, उनकी पूजा करके हाथ जोड़ करके कहे प्रभु आप रथ में पधारिए। बस स्पर्श करने के साथ साथ अपने आप करके वहां पर ले जा करके कहां ले आए, जहां जलसम तक बनाया था विशाल जगह, और ब्रह्मा जी ने वहीं पर कितनी जगह दिए इन पर दिन में वहां पर जगह किया, वहीं पर ले करते गए जहां पर मूल मंदिर है, वहां विशाल एरिया में मंडप बनाया गया और जितने राज्य भर के कारुकाज करने वाले थे उनको बुलाया। इससे विग्रह बनाना है जगन्नाथ बलदेव वस्त्र और चक्र, कोई भी आकर के कुछ न कर सका, उनके अस्त्र शस्त्र यहाँ तो मरे और लोहे जैसा ठंड करके टूट करके गिर गए। कुछ दिनों के बाद में एक बूढ़ा आया, बड़ा तपस्वी और कोई नहीं था, कहीं जगन्नाथ जी अपना नाम बतलाया, कोई अनंत महाराणा, अनंत महाराणा अपना नाम बताया। उन्हें बताया कि मैं मूर्ति तैयार कर दूंगा, किंतु 21 दिन का समय चाहिए, घर में बंद करके करूंगा, कोई बीच का न करे, कोई दरवाजा न खुले। सब लोग राजी हो गए, घर के अंदर में ले करके गए और रख दिया। 14 दिन बीत गए किंतु कोई ठंड खून कोई भी आवाज खट खट कुछ नहीं हुई। रानी ने कहा ये दुर्घटे तो खाई, दरवाजा खुला नहीं, पानी नहीं पिया, कुछ न जाने क्या हुआ, ये मर गया था, एक ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, खुलिए। जबरदस्ती राजा से खुलवाया और जो ही खुलवाया तब तक वो तो हट करके अंतर ध्यान हो गए और मूर्ति जैसे के थी, उसी रूप में गोल गोल आंखें, नाक तक बन पाई थी, हाथ यहाँ तक बन गया था, उंगली तो उंगली कुछ भी नहीं थी। राजा बड़े दुखी हुए, हमने बाधा दी और ये मुक्ति ठीक से प्रकाशित नहीं हुए और वो ब्राह्मण चले गए। मंत्री का ने कहा जैसे नहीं, वो साधारण आदमी थे, वो स्वयं जगन्नाथ जी थे, अपने से अपने रूप में उन्होंने अपने को इतने रूप में प्रकाशित किया। अब जो हो गया अब अधिक चिंता मत किए सर, अब इसी को ही प्रतिष्ठा करानी। इसमें मैं आकाशवाणी भी आई थी और लोगों ने सब परामर्श किया बिगड़ो को वहां पर। इसलिए वो जो पहले से आए हुए थे जो कारीगर जिनको बुलाया गया था हजारों लोग, उनको लगा दिया मन ये तीन रथ बनाने के लिए। तो वो लोग एक महीने तक वो सब रथ बना रहे थे और उधर में 21 दिन में ये बना रहे थे ये। तो उन लोगों ने तीन रथ बड़े विशाल विशाल ऊंचा बनाया, इससे भी बहुत ऊंचा यहाँ से किसी में कुछ, किसी में 18 बताए और किसी में 12, सुभद्रा में 12, कृष्ण में 16, 14, 12, ये इस तरह से बनता है बड़े विशाल विशाल। वो 3-4 महीना लग जाता है शायद तो रथों को ही, प्रति वर्ष नया नया बना नई नई लकड़ियों का अक्षय तीज से आरंभ करते हैं और आज तक वो कम्प्लीट हो रहा रात का काम करेगा। और नाना प्रकार के किंगड़ी वस्त्र दर्पण इत्यादि उसमें मोर के पंख इत्यादि सब तरह से उसे सजाते हैं, विभिन्न प्रकार के चीजों में तैयार करते हैं। तो कल के दिन भी जाता है। तो इस तरह से उनको लगाया उसमें, अब उसी को आज कुंडिका मंदिर मानेगा। अब ऐसा भी प्रश्न होता है कि ऐसा ठाकुर जी क्यों हुए, एक लीला ये दिखलाने के लिए। मैं प्रेम के वशीभूत होकर के मैं द्रवित हो जाता हूँ इस चीज को दिखलाने के लिए। ये बड़े करुणा की और बड़े दयालु हैं, ये पति पावन हैं। ये अभी भी वहां पर पूर्वी गेट पर पति पावन एक वहां पर मूर्ति है। कुछ लोग कहते हैं चेतन महापुरुष जी ने स्थापित की, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक मुसलमान राजा था उसने आक्रमण किया वहां और आक्रमण किया, आक्रमण करके एक हिंदू नारी को पकड़ करके ले गया जबरदस्ती। वो किंतु भक्त थी और जबरदस्ती उसको अपने घर में ले गया और उसे जबरदस्ती शादी की। उसी से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था साहू। वो बचपन से माता जी के अनुसार में वो भक्त था। माता जी रोकी और कहती और सब समय जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए उत्कंठा प्रदान करती। उसकी भी बड़ी इच्छा हुई मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा, इसलिए वो भक्त मुसलमान के रूप में हिंदू लोग उसे ग्रहण नहीं करते। तो वो आया वहां और भीतर में जाना चाहा, भीतर में इंदिरा गांधी को नहीं जाने दिया, तो जिसने कि वो प्रधानमंत्री सिंह को नहीं जाने दिया, तो उस हाल में वो क्या कहा नहीं जाने दिया। हिंदू लोग सभी चारों ब्राह्मण वैश्य सभी चले जाए किंतु और कोई नहीं जाए। अभी भी अंग्रेजों लोगों को भी नहीं जाने देते। तो वो बाहर से रह करके और प्रार्थना करने लगा, बिना खाए पिए गेट से बाहर रह करके रुका। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, रात में दरवाजा खोल करके और उस दरवाजे पर आकर के बैठ गए और वहीं से उसको दर्शन दिए। इसलिए उनका नाम हो गया
पवन जगन्नाथ देव।
और फिर वो गए नहीं तो उनकी प्रतिभू विग्रह वहां पर भीतर में हुई और असल जगन्नाथ जी वहीं पर रहे। आज तक भी वो वहीं पर बैठे। कुछ लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी समस्त लोगों को जाति निर्विशेष सब लोगों को दर्शन करने के लिए वहीं पर उनको पधरा दिया, जैसे भी वो पतित पावन के रूप में। इसलिए जगन्नाथ जी बड़े पतित पावन थे और इसीलिए वो सबको दर्शन देने के लिए ही ये द्वादश दूज से लेकर कल है दूज ना कल से लेकर के एकादशी के दिन शायद लौटे। कितना दिन? 9 दिन।
9 दिन।
9 दिन
लौटे।
इसीलिए वो नगर भ्रमण करते हैं कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं, जो ही नहीं, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, और ऐलान कर देते हैं कि मैं, मुझे कोई भी दे सकता है वो, और सबका भोग ले लेते हैं। जो कोई जाएगा, जो कुछ भोग लेगा, जो कुछ इच्छा हो, जो कुछ मैंने शास्त्र विरुद्ध चीज नहीं, सात्विक वस्तु हो, फल है, कंद है, मूल है, और नारियल है, नारियल का भोग खूब लगता है वहाँ, और मिठाई इत्यादि जो कुछ भी हो, कीड़े में भोग लगता है, मूली लेती है, मुर्सी लगता है, ये सब जितने चीजें हैं वो सब तरह के फल इत्यादि लगते हैं। बट भोग देने में कोई कष्ट नहीं, बस वहाँ चले जाए उनको दिखला देते, बस इतने में वो अपने दृष्टि से भोग लगा देते हैं। कितने प्रतिष्ठा होंगे, लोग परीक्षा करते हैं कि खाते हैं कि नहीं। आज जैसे मुरारी गुप्त खिलाया ना
आलू,
ऐसे वो खा लेते हैं और वो बतला देते हैं हाँ हमने खाया
आलू।
बहुत इसके प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है, जो जो देना चाहेगा उसको प्रसिद्धि करा देते हैं कि हाँ हमने। महाप्रभु जी ने कहा कि ये सिर्फ ठाकुर जी को बत्ती जला दो, बत्ती जला दो, वो ठाकुर जी को लग जाते, किंतु इन्होंने क्या किया? पटक दिया। यदि सब कुछ उनको दिया होता तो वो मिल जाता। सुनते हैं कहीं कोई भक्त था, वो तेल लेकर के और ठाकुर जी के सिर पर ढाल रहा है मनी मन में जगन्नाथ जी को, और वो अपने घर में गिर रहा है, और वहां से जाकर के खबर आई है उसका जितना तेल है सुगंध सब वहां पर आ रहा है जगन्नाथ जी।